नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत ने आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की है। चुनाव आयोग आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल चुनाव प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुई आग दुर्घटना में 14 लोग घायल। देश भर में आज रंगों का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ होली मनाया जा रहा है। और IPL क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को सलाह दी जानी चाहिए कि वो आतंक की फैक्ट्रियां बंद करे जो जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकी हमले करवाती है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान का इतिहास है कि वो आतंकवादियों को मदद और पनाह देता रहा है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कल जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं सभा के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ उत्तर देने की अपने अधिकार में ये बात कही। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा घोषित आतंकवादियों की विशाल संख्या को सहायता और पनाह देने की घृणा रिकॉर्ड बनाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि वैश्विक आतंक का चेहरा ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही छुपा हुआ था। भारतीय क्षेत्र के बारे में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज करते हुए उपसभापति ने कहा है कि अगर लोकतंत्र के बारे में बहुत खराब रिकॉर्ड रखने वाला कोई देश भाषण देता है तो हंसी आती है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कई देश भारत के लोकतंत्र मॉडल का अनुसरण करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए राज्यसभा के उपसभापति ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था की लफाजी और दुष्प्रचार से तथ्यों को गलत साबित नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल चुनाव प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहा है। आयोग ने चुनाव मशीनरी और राजनीतिक दलों को मतदाता सूची और चुनावी सामग्री के लिए कागज का उपयोग कम से कम करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव निकाय ने ई बुक्स और ई डॉक्यूमेंट्स के उपयोग पर जोर दिया है और डबल साइड प्रिंटिंग और लेआउट अनुकूल सुनिश्चित करने को भी कहा है। उज्जैन में आज सुबह महाकालेश्वर मंदिर में आग लग गई। भस्म आरती के दौरान ये घटना हुई। मंदिर के पुजारी समेत दर्जनों लोग घायल हुए। घायलों की संख्या 14 बताई गई है। घायलों को उज्जैन के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला कलेक्टर ने आग लगने की दुर्घटना की जांच करने के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आग लगने की घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने इसमें घायल हुए सभी श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। श्री मोदी ने कहा है कि राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद कर रहा है। इधर गृहमंत्री अमित शाह ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आग लगने की घटना के बारे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात की। उन्होंने घटना के बारे में जानकारी ली। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा है कि स्थानीय प्रशासन घटना में घायल लोगों को हर प्रकार की सहायता और उपचार उपलब्ध करा रहा है। देश भर में आज रंगों का त्यौहार होली हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में वसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। इस दिन को लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने कहा है कि होली खुशियां का त्यौहार है जो जीवन में उत्साह और उम्मीद लाता है। उन्होंने कहा है कि होली के विभिन्न रंग देश की विविधता का प्रतीक है और ये त्यौहार लोगों के बीच स्नेह, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि ये त्यौहार सभी के बीच आपसी संबंधों को मजबूती देता है और वसंत ऋतु के स्वागत का संदेश देता है। श्री धनखड़ ने कहा है कि होली का पर्व आपसी मेल मिलाप और बीती कड़वी बातों को भुलाकर नए अवसरों को अपनाने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि होली सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगी। रंगों के त्योहार होली में जम्मू के रियासी में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं ने अगले महीने शुरू होने वाले चुनाव को देश का महात्योहार के रूप में मनाया। इस अवसर पर युवा मतदाताओं ने अन्य मतदाताओं से होली की भावना के अनुरूप मतदान करने का आग्रह किया। युवा मतदाता आकाशदीप सिंह और उनके मित्रों ने जनता से अपील की कि वे होली की भावना को समझते हुए मतदान के दिन अपनी उंगली को अमित स्याही से रंग कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम से ब्रज मंडल तक पूरे प्रदेश में होली का उल्लास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रात गोरखपुर में होलिका दहन शोभा यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ऐसे महोत्सव सद्भाव, शांति और समानता के प्रतीक होने चाहिए। दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर मेट्रो आज दोपहर 2:30 बजे तक उपलब्ध नहीं रही थी। इनमें रैपिड मेट्रो और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शामिल है। दोपहर 2:30 बजे के बाद सभी टर्मिनल स्टेशनों में सभी लाइनें सामान्य रूप से यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने इस साल जनवरी महीने में 16,02,000 कर्मचारी जोड़े हैं। ईपीएफओ के अंतरिम वेतन विवरण के अनुसार इस साल जनवरी में लगभग 8,08,000 नए सदस्यों का नामांकन किया गया है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि विवरण से ये भी पता चलता है कि इस अवधि के दौरान कुल नए सदस्यों में 18 से 25 वर्ष उम्र के लोगों की संख्या 56% है और संगठन कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश व्यक्ति युवा हैं जिन्हें पहली बार नौकरी मिली है। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र पश्चिम बंगाल में हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्रों में सिक्किम में कल तक लगातार वर्षा और गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश में अधिकांश स्थानों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बलूचिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या हिमपात हुआ। शुक्रवार को रूस के मॉस्को में हुए हमले में 137 लोगों की मृत्यु के बाद एक दिन का शोक मनाया गया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आरोपियों की जल्द ही पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन देने के बाद कल राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा की। रूसी अधिकारियों ने बताया है कि हमले से जुड़े 11 अपराधियों को हिरासत में लिया गया है। इनमें 4 बंदूकधारी शामिल है। कट्टरवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। श्रीलंका में चल रहे मेरिन पोया पर्व के शुभ अवसर पर भारतीय उच्चायोग ने कोलंबो के श्री संबोधि महाविहार मंदिर में एक बौद्ध प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं और समूचे भारत की स्थिति, बौद्ध तीर्थ स्थलों की तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा इस अवसर पर मौजूद रहे। भारत ने कल विश्व कबड्डी दिवस के अवसर पर 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया। हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवी लाल इंडोर स्टेडियम में ये इतिहास बनाया गया। हॉलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन और हरियाणा सरकार के बीच हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य विश्वभर में कबड्डी को प्रोत्साहन देना शामिल है। इस आयोजन के लिए भारत का चयन करने का एक प्रमुख कारण यह था कि इस आयोजन के लिए हरियाणा में विशेष रूप से स्थल उपलब्ध है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात जयपुर के स्वाई मानवल सिंह इंडोर स्टेडियम में राजस्थान रॉयल ने लखनऊ सुपर जॉइंट को 20 रन से हरा दिया। राजस्थान ने लखनऊ को 194 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में लखनऊ की टीम 6 विकेट खोकर 173 रन ही बना सकी। आईपीएल के दूसरे मुकाबले की कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 6 रन से हराया। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 9 विकेट खोकर 162 रन ही बना सकी। आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।